तक साथ भी लेक्चर नंबर 20।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं। नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो वज्रायाणं। नमो लोये सौवसाऊनं। नमियोऽनन्तगिरिनं। अनन्तनाणेन दिट्ठसौवर्धं। तमपदेशविहतिम्
यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधवला टीका है, जो कषाय पावर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिऋषभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। सातवीं पुस्तक, जो प्रदेश विभक्ति नाम का अर्थाधिकार है, उसमें अभी हम पृष्ठ संख्या 98 पर आ गए। 98 यहाँ हम तिर्यंच गति में देख रहे हैं ना, एक केंद्रीय में देख रहे हैं। देखो यहाँ पृष्ठ संख्या 91, वहाँ 9 ही लिखा है केवल, वहां से शुरू हुआ था 91 से।
नीचे से शुरू
91 पेज में वो 9 छपा, एक छपा ही नहीं है ऊपर, नीचे उसमें एकदम लास्ट, उसमें सबसे तो सम्यक को में देखा,
सबसे से
उसके बाद सम्यक मिथ्यात्व और प्रत्याख्यान, मान क्रोध माया लोभ, फिर प्रत्याख्यान मान क्रोध माया लोभ, अनंतानुबंधी मान क्रोध माया लोभ, उसके बाद मिथ्यात्व, फिर हास्य में अनंत गुणा हो गया, हास्य रति त्रिवेद शोक रति नपुसक वेद, फिर जुगुप्सा भय और पुरुष वेद, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब यहाँ पुरुष वेद से आगे पढ़ेंगे। मान संजोलन में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है, 25 नंबर डाला ना इसको, कितना अधिक है, पुरुष वेद के द्रव्य का 1/4 अधिक है, शेष कथन सुगम है। पुरुष वेद के द्रव्य में उसका 1/4 भाग मिला दो, इतना इसका ज्यादा है, उसका भी कारण हमने देखा था। नो कषाय का जो अभी हमने देखा ना, उसमें 1/10 आया था, इसमें 1/8 आया था, तो वो इसमें चला जाता है तो 1/4 हुआ। उससे क्रोध संज्वलन, हाँ ऊपर सूत्र, हाँ अरविंद भाई कुछ कह रहे, हाँ ऊपर सूत्र पढ़ना रही है। पहले मान संज्वलन है उत्कृष्ट पदेश संत कम्मम विशेष आयम, जो अभी हमने देखा, कोहे उत्कृष्ट पदेश संत कम्मम विशेष आयम, उससे क्रोध संज्वलन में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है। यहाँ पर पूर्व के सूत्र में से संज्वलन पद की, पद ने शब्द की अनुवृत्ति होती है, यानी कंटिन्यूटी होती है, और प्रकृति विशेष होने के कारण इसका द्रव्य विशेष अधिक सिद्ध होता है, शेष कथन सुगम है। माया है उत्कृष्ट प्रदेश संतकम विशेषाह्यम, उससे संज्वलन माया में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है। लोहे उत्कृष्ट प्रदेश संतकम्मम विशेषाह्यम, उससे संज्वलन लोभ में उत्कृष्ट प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है। ये दोनों ही सूत्र सुगम है, क्योंकि विशेष अधिक का कारण प्रकृति विशेष मात्र है। इस प्रकार आगम में निपुण जीवों को सूत्र के अविरोध रूप से अनाहारक मार्गणा तक उत्कृष्ट अल्प बहुत्व का विचार कर लेना ले जाना चाहिए। फिर शंका, देशामर्शक रूप से जिसमें समस्त मार्गणा संबंधी विशेषता का संग्रह हो गया है, ऐसे ही सेकेंद्रिय संबंधी उत्कृष्ट प्रदेश अल्प बहुत्व दंडक की विशेष प्ररूपणा आप क्यों नहीं करते? समाधान, नहीं क्योंकि इसकी अर्थ प्ररूपणा सुगम है, उसका कोई फल नहीं है, इसलिए अलग से प्ररूपणा नहीं की है। यदि कहा जाए कि शेष मार्गणाओं में अल्प बहुत्व प्ररूपणा की सुगमता असिद्ध है, सो भी बात नहीं है, यानी वो सुगम नहीं है। यदि ऐसा कोई कहते अन्य मार्गणा में, तो कहते क्योंकि ओघदंडक ने ओघ में तो अल्प बहुत्व बता दिया, गति मार्गणा दंडक गति में भी बता दिया, उन्होंने नरक गति की बात कही थी और ऐसा ही अन्य गतियों में समझना कहा था, और एकेंद्रिय दंडक के कथन से यानी ओघ फिर गति मार्गणा में और एकेंद्रियों में बता देने से ये सभी काय मार्गणा आदि सभी मार्गणाओं ने घटित करना सुलभ हो जाता है।
उन्होंने ऊपर ये एकेंद्रीय संबंधी पूछा तो एकेंद्रीय अलग अलग पर्याय की अपेक्षा स्थावर की अपेक्षा पांच स्थावर की अपेक्षा बात कर रहे, क्योंकि एकेंद्रीय का दंडक तो बता दिया उन्होंने आगे।
एक अल्प बहुत्व दंडक की विशेष प्ररूपणा, विशेष प्ररूपणा करते उसका और विस्तार से बता दो क्यों हुआ क्या हुआ, ये तो पहले बता चुके थे स्वामित्व कैसे होते है वहाँ क्यों होता है इससे ये अधिक क्यों है आदि बातें। समस्त मार्गणों का ज्ञान देखा जाता है। 99 पुष्करम पढ़ लिया। अब उत्कृष्ट अल्प बहुत्व की समाप्ति के अनंतर यथा अवसर प्राप्त, यथा अवसर यानी अभी जो किसका नंबर आया जघन्य प्रदेश अल्प बहुत्व का कथन करने के लिए यति ऋषभ भगवान प्रतिज्ञा सूत्र कहते हैं। जैसे उत्कृष्ट में अल्प बहुत्व लगाया, अब जघन्य में अल्प बहुत्व लगाएंगे। जहन्न दंडो ओघेन सकारणो भणिकिरि, जघन्य दंडक कारण सहित सकारणों का बणिदि ओघ से कहेंगे, ओघेन बणिदि इस वक्तव्य रूप प्रतिज्ञा सूत्र के अर्थ का विवरण करते हैं। यथा अल्प बहुत्व दो प्रकार का है, ये पहले नहीं बताया था अभी बता रहे हैं। पहले तो डायरेक्ट उत्कृष्ट का प्रकरण ले लिया था, जघन्य और उत्कृष्ट इन दोनों से विशेषित होकर दंडकों की भी वही संज्ञा है। क्या कहना चाहते हैं? उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति में अल्प बहुत्व का जो नंबर एक से लेकर जो हमने 28 तक नंबर लगाए उसको दंडक कहेंगे। उत्कृष्ट प्रदेश विभक्ति में जो हमने नंबर लगाए उसको उत्कृष्ट दंडक, दंडक को ही उत्कृष्ट कह दिया, ख्याल में यानी उत्कृष्ट संबंधी दंडक। और अभी यहाँ जघन्य दंडक बताएंगे, यानी जघन्य प्रदेश विभक्ति संबंधी अल्प बहुत्व का जो कथन है उसके जो नंबर लगाएंगे उसको जघन्य दंडक कहेंगे। उनमें से जघन्य दंडक के निर्देश करने का फल अपने उत्कृष्ट दंडक का निषेध करना है। जघन्य दंडक क्यों कह रहे हो? क्योंकि यहाँ उत्कृष्ट की बात नहीं हो रही है, जघन्य प्रदेश सत्कर्म की हो रही है, इसलिए उत्कृष्ट न लिखकर जघन्य लिख दिया। यदि ऐसा है तो जघन्य दंडक पद का निर्देश नहीं करना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट दंडक का पहले ही कथन कर आए हैं, इसलिए पारिशेष न्याय। पारिशेष क्या होता है?
शेष बचा, शेष बचा हुआ।
हाँ, जो बचा हुआ, एक का दो ही होते हैं उत्कृष्ट और जघन्य, उसमें से उत्कृष्ट बता दिया, बचा कौन सा? जघन्य। तो ये जघन्य कहने की क्या जरूरत थी, ये कहना चाहते। तो पारिशेष न्याय के अनुसार बिना कहे ही इसकी सिद्धि हो जाती है। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि मंद बुद्धि शिष्य का अनुग्रह करने के लिए उस प्रकार से कथन किया है, और इसी से ही शब्दानुसार ही शिष्य की पृच्छा के फलस्वरूप इस प्रतिज्ञा सूत्र का भी उपन्यास सफल है। यानी ये प्रतिज्ञा सूत्र भी क्यों कहा, उसका भी उद्यम क्यों किया? तो यह कहते शब्दानुसार ही शिष्य
वर्ड टू वर्ड फॉलो करना,
अच्छा वर्ड टू वर्ड फॉलो करना। अन्यथा प्रेक्षा पूर्वक व्यवहार करने वालों के लिए यह आदरणीय नहीं हो सकता। एक तो है शब्द 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 टू शब्द, यानी एक एक शब्द के अनुसार जान ले, और एक होते हैं थोड़े में बताए तो जान ले सकते। इससे भगवान सब जीवों का अनुग्रह करने वाले होते हैं यह सूचित होता है। क्या कहते हैं, कोई होते ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, जट से उसमें से अर्थ जो सूचित अर्थ है उसको पकड़ लेते हैं, और कोई उसको खोल खोल कर बताए तो समझ में आता है। तो दोनों ही प्रकार के शिष्यों को अनुग्रह करने वाले हैं। यहाँ लिखा ना भी अनुग्रह का अर्थ क्या होता है,
ग्रहण करने,
उपकार,
मेहरबानी।
हाँ मेहरबानी, उपकार बराबर शब्द है। जैसे हम अंग्रेजी में थैंक्स कहते हैं ना, थैंक यू, तो संस्कृत में क्या कहते हैं, अनुग्रहीतास्मि, यानी मैं आपका अनुग्रहित हूँ। अथवा जघन्य स्वामित्व के समय कहे गए अनंत भेदों को लिए हुए अजघन्य स्थानों के विकल्पों का निराकरण करने के लिए सूत्र में जघन्य दंडक पद का निर्देश करना चाहिए। एक कहते उत्कृष्ट का तो निषेध हो गई, हो ही है, हुआ, अजघन्य का भी हो गया। ये अजघन्य की बात नहीं हो रही है, जघन्य की बात हो रही है, ये कहना चाहते हैं। तो अजघन्य कितने प्रकार का होगा, एक परमाणु ज्यादा, दो परमाणु ज्यादा, ऐसे करते करते अनंत, तो उसमें अनंत विकल्प हो सकते हैं। यही बात लिखा, लिखिए अजघन्य स्थानों का विकल्प कितने हैं, अनंत भेदों को लिए हुए अजघन्य स्थान। एक एक परमाणु के अधिक से अलग अलग अलग, जो जघन्य नहीं है वो सारे अजघन्य, तो अजघन्य के भेद कितने होंगे, अनंत हो गए। ख्याल में आई ना बात, इसलिए सूत्र में जघन्य दंडक पद का निर्देश करना चाहिए।
उसका ओंकार ध्वनि में भी इसे फर्क होता है,
किसमें
ओंकार ध्वनि, भगवान जो तीर्थंकर के शरीर से जो ध्वनि निकलती है वो तो ओंकार रूप से होती है।
हाँ।
वहाँ पे ग्रहण करने वालों की अपेक्षा ये बात है, तो कोई डिटेल में समझाएगा कोई, तो यहाँ पे ये भगवान सब जीवों का अनुग्रह करने वाले होते हैं।
हाँ। यहाँ तो भगवान आचार्य को भी भगवान कह दिया है, पहले बात आई थी ना, भगवान कहते हैं उनको आचार्य, उनको अभी अभी सूत्र के पहले लिखा था
उन्होंने,
यति वृष भगवान प्रतिज्ञा सूत्र कहते हैं, क्योंकि ये उन्होंने रचना की है ना, यति वृष आचार्य ने की है। आचार्य भी सबका कल्याण करने वाले हैं, उनके सामने अलग अलग शिष्य है, तो उनको भी पता है, कोई जल्दी पिकअप करता है, कोई किसी को पूरा विस्तार से समझाए तो भी यानी बहुत मुश्किल से समझ में आता है, ऐसा भी है। फिर भी वो तो उनकी तो ऐसी है ना कि करुणा ऐसी है कि सब जीव इसको समझ जावे। ये टोडरमल जी को भी इतना देश भाषा में लिखने का क्यों विकल्प आया, संस्कृत प्राकृत तो ग्रंथ थे ही थे, उनका विरोध भी बहुत हुआ था कि ग्रंथों को आप डिवेल्यूट कर रहे हैं, यानी उनको उनका महत्व कम हो जाता है। ग्रंथ तो संस्कृत में और प्राकृत में ही होना चाहिए, ऐसे वहाँ सभी लोगों का, अनेक लोगों का हट भी था, और बहुत विद्वानों का भी उनको विरोध हुआ था, विद्वानों ने विरोध किया था उनका। समय ज्ञानचंद्री का पीठिका में लिखा है ना उन्होंने, आप कहते हो संस्कृत में तो ग्रंथ है ही, आप ये क्यों लिख रहे हो, ग्रंथ तो उसी में शोभा देते हैं, देश भाषा में क्यों बनाते हो। फिर भी उनके क्या कहना था, ये तो जन सामान्य इसको समझे, संदृष्टि तो मूल ग्रंथ निकाल के देखे, अभी जो संस्कृत में ओरिजिनल संदृष्टियां तो पड़ी है, वो तो क्या लिखा है वो भी समझ में आता नहीं है, वो तो हाँ कुछ तो है, चलो आगे बढ़ो। इन्होंने एक एक संदृष्टि को खोल कर बताया कि ऐसा क्यों लिखा है, उसका क्या मीनिंग है, ये किसका चिन्ह है, और उसके एक एक का अर्थ क्या है, ऐसे प्रत्येक संदृष्टि जहाँ लिखे उसका अर्थ खोल के बताए। तो यहाँ तो कहते भगवान सब जीवों का अनुग्रह करने वाले होते हैं, यहाँ तो यति ऋषभ आचार्य को भगवान कहा है। देखो निर्देश दो प्रकार का है, ओह और आदेश। उनमें से आदेश निर्देश का निराकरण करने के लिए सूत्र में ओग से पद का निर्देश किया है। पहले ओग से बताएंगे, बाद में आदेश से। व्याख्यान कारक आचार्यों की पृच्छा के फलस्वरूप सकारण कहेंगे, इस सूत्रावयव का निर्देश किया है। सूत्र का अवयव सकारण कहेंगे, लिख दिया ना सूत्र में। अन्यथा अल्प बहुत्व के कारण का जो भी ज्ञान है उसका कथन छद्मस्थों के बिना अवलंबन के आगम युक्ति पुरस्सर है, यह नहीं बन सकता। ये बिना शब्द आगे लगाना, छद्मस्थों के बिना नहीं लगाना, बिना अवलंबन के। अल्प भूतवे का कारण का जो भी ज्ञान है उसका कथन छद्मस्थों के नहीं बन सकता। कैसे नहीं बन सकता?
बिना
अवलंबन के आगम युक्ति पुरस्सर है, यह नहीं बन सकता।
आगम युक्ति
यह सूत्र दिशा का आभास मात्र करता है, क्योंकि सम्यक्त्व के जघन्य प्रदेश सत्कर्म से सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म बहुत है, इतने मात्र से उपरिम पद बीज पद रूप से सूत्र में कारण का निरूपण करते हैं। यहाँ पर कारण सहित विद्यमान जघन्य दंडक ओग से कहेंगे, इस प्रकार पद संबंध करना चाहिए, शेष कथन सुगम है। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ तो दिशा का आभास करता है नहीं, वो तो केवल कह देते हैं। ये तो पूरी जो स्वामित्ववादी में विशेष चर्चा हुई है वो पूरा यहाँ नहीं बताएंगे, इससे वो ज्यादा है इतना बता देंगे, या कितना ज्यादा है कौन से पोजीशन पर है उतना बता देंगे। हाँ उपन्यास ऊपर आई प्रतिज्ञा सूत्र का भी उपन्यास सफल है। उपन्यास ने कथन, ये ऊपर समाधान की तीसरी लाइन, ऊपर के समाधान की तीसरी लाइन। देखो यहाँ क्या लिखा था, एफर्ट्स शब्दानुसारी शिष्य की पृच्छा के फलस्वरूप इस प्रतिज्ञा सूत्र का भी उपन्यास सफल है। उद्यम मैंने तभी तो उद्यम कहा था, कथन भी होगा ना वो। हाँ उद्यम या कथन, कथन अच्छा है क्योंकि उपन्यास वैसे उपन्यास हम नॉवेल को कहते हैं, हाँ यानी कादंबरी जिसको कहेंगे। नहीं नहीं बिना आगे पीछे नहीं करना है, पढ़ते समय बराबर पढ़ना है। अभी जो हमने देखा था ना, अल्प बहुत्व के कारण का जो भी ज्ञान है उसका कथन छद्मस्थों के नहीं बन सकता, यानी आगम युक्ति पुरस्सर यह नहीं बन सकता। क्या कहते हैं? छद्मस्थ ये जो कथन है वो आगम पुरस्सर यानी आगम के अनुसार है, यह नहीं जान सकते। कैसे? बिना अवलंबन के, यानी उनको कोई अवलंबन चाहिए तभी वो आगम का कथन है, वो आगम के अनुसार है वो जान सके, इसलिए सकारण कहेंगे, ये कारण बता देंगे। अब हम सूत्र पढ़ेंगे, सवत्थवम सम्मत्ते जघन्य पदेश संतकम्मम। अभी जघन्य की बात हो रही है, पहले हमने उत्कृष्ट की देखी थी। सम्यक प्रकृति का जघन्य कब होता है याद है कुछ?
उद्वेलना
में, वो भी हमने देखा ना। अभी जघन्य तो क्षपित को याद करना, क्षपित कर्मोंशिक से आया है, ये सम्यक को प्राप्त किया है और सम्यक को में लंबे काल तक रहेगा, दो छासर सागर
और अंत पे जाके
फिर जाके
मिथ्यात्व
में चला जाएगा, और दीर्घ उद्वेलना काल में उद्वेलना करेगा, उसके अंतिम समय में उसका जघन्य होगा। तो ये सबसे स्तोक है। जघन्य अल्प बहुत्व दंडक के मूल रूप इस सूत्र के अवयवों के अर्थ का कथन करते हैं। यथा सबसे अर्थात आगे कही जाने वाली सब प्रकृतियों के जघन्य प्रदेशों से संबंध रखने वाले प्रदेशों के से, यानी आगे जो जो प्रकृतियां कहेंगे उनके जितने जघन्य प्रदेश है उससे तुलना करेंगे तो सम्यक प्रकृति का जो जघन्य प्रदेश सत्कर्म है वो सबसे कम है, अल्पतर है, उसी को सर्वस्तोक कह दिया। स्तोक यानी अल्प। वह सर्वस्तोक क्या है? तो कहते सम्यक तो में जघन्य प्रदेश सत्कर्म, उसी की तो बात चल रही है। यहाँ सम्यक पद के निर्देश का फल शेष प्रकृतियों का प्रतिषेध करना है। एक एक शब्द क्यों डाला ये बात बता रहे हैं। वैसे तो कुछ जरूरत नहीं है फिर भी चर्चा तो कर रहे हैं। जघन्य पद के निर्देश करने का फल अजघन्य आदि विकल्पों का निवारण करना है। यानी वो जघन्य की बात हो रही है ना, अजघन्य की ना, उत्कृष्ट की ना, अनुत्कृष्ट की। स्थिति और अनुभाग आदि का निवारण करने के लिए प्रदेश पद का निर्देश किया है। यानी जघन्य ये स्थिति की बात नहीं चल रही है ना ही अनुभाग की, ये तो प्रदेश की बात चल रही है। बंध आदि विशेषों का निषेध करने के लिए सत्कर्म यह वचन दिया है। उसके सत्व की बात है। सत्ता में जो प्रदेश पड़े हैं, सत्ता में तो प्रकृति भी होती है, सत्ता में तो निषेध भी होते हैं, अनुभाग भी होता है। यहाँ प्रदेश सत्कर्म कहेंगे। जो क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर, हमने याद किया था ना इसको, निरतिचार रूप से असिधारा चर्या के द्वारा, ये असिधारा क्या होती है? असिधारा व्रत सुना है कभी? असी किसको कहते हैं? असी मसी वाणिज्य, हाँ असी किसको कहेंगे? तलवार को। असी यानी तलवार की जो धारा होती है
उस पे चलना,
तो तलवार की धार पर चलना क्या आसान है? नहीं है। तो पहले भी राजाओं को ऐसे कहते ये असी धारा व्रत धारण किया हुआ, कैसे नहीं न्यायपूर्वक चलना या ऐसे कठिन कोई बात होती है तो उसको कहेंगे अति असी धारा।
तलवार पे चलना जैसा कठिन है,
सम्यक्त्व का पालन करना
जो आचरण है उनका,
निरतिचार क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर निरतिचार रूप से असिधारा चर्या के द्वारा कर्म स्थिति प्रमाण काल तक परिभ्रमण करके पुनः स्तोक आयु वाले असंगी पंचेंद्रियों में उत्पन्न होकर और देवायु का बंद होने से देवों में उत्पन्न होकर छह पर्याप्तियों को पूर्ण करने रूप व्यापार के द्वारा अंतर्मूर्त काल जाने पर अपूर्वकरण आदि परिणामों के द्वारा उत्कृष्ट गुणश्रेणी निर्जरा करके उपशम सम्यक को प्राप्त होने के प्रथम समय से लेकर सबसे जघन्य गुण संक्रमण काल और सबसे उत्कृष्ट गुण संक्रमण भागा है। ये क्या होता है? गुण संक्रमण काल यानी कितने समयों तक लगातार गुण संक्रमण होता रहे
अंतर्मूर्त,
तो उसको कहेंगे जघन्य। उसमें भी जघन्य उत्कृष्ट होगा, अंतर्मूर्त भी जघन्य उत्कृष्ट। तो कम काल में होगा तो कम परमाणु सम्यक हो जाएंगे। और कहते भागहार कितना चाहिए? उत्कृष्ट होना चाहिए
कम परमाणु,
तो कम परमाणु संक्रमित हो गए। मिथ्यात्व के स्तोकतर द्रव्य को, क्योंकि मिथ्यात्व का द्रव्य पहले ही कम करके आया है, क्योंकि क्षपित कर्मांशिक की पूरी विधि है वो कर्म स्थिति प्रमाण काल एकेंद्रियों में भ्रमण किया है उसने। ये निरतिचार रूप से असिधाराचार्य के द्वारा कर्म स्थिति प्रमाण काल तक परिभ्रमण करके वो तो एकेंद्रियों में जाता है ना। हाँ अच्छा, उसके बाद वाला ठीक है। तो मिथ्यात्व के स्तोकतर द्रव्य को मिला ना नीचे से पांचवी छठी लाइन, सम्यक रूप से परिणमा कर अनंतर वेदक सम्यक को प्राप्त कर, ये ख्याल में आई बात, उसके साथ दो छासर सागर काल तक परिभ्रमण करके अनंतर मिथ्यात्व में जाकर सबसे दीर्घ उद्वेलना काल के द्वारा अंत में सम्यक्त्व की अंतिम फाली को मिथ्यात्व रूप से परिणमा कर दो समय काल की स्थिति वाले एक निषेक को धारण कर स्थित है। उद्वेलना करता है तो पहले तो फालियों में करते हैं ना, जैसे स्थिति कांडघात होते हैं वैसे उद्वेलना के भी कांडघात होते हैं, और लास्ट में जो एक आवली प्रमाण होगी तो एक एक निषेक संक्रमित होगा। इसलिए कहते दो समय काल की स्थिति वाले एक निषेक को धारण कर स्थित है उसके सम्यक्त्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म, शेष प्रकृतियों के जघन्य प्रदेशों को देखते हुए स्तोकतर होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है।
यहाँ पे ये जो कर्म स्थिति काल प्रमाण एकेंद्रीय में भ्रमण करवाया है सितर कोड़ा कोड़ी सागर तक, तो हाँ। वहाँ पे भी उसको असिद्धाचार्य के द्वारा एकदम मंद कसाई जीव लेना है ना,
क्षपित कर्मांशी की विधि से आकर फिर और कर्म स्थिति प्रमाण काल तक परिभ्रमण किया उसने।
हाँ, तो सत्तर कोड़ा कोड़ी काल तक तो वो एकेंद्रीय में जाएगा ज्यादातर काल तक, वहाँ पे भी एकदम मंद परिणामी जीव लिया,
मंद वाला लिया। अभी उसको अस्सी धारा क्यों कहा? इसका स्तोकपना कैसे है, शंकाकार पूछता है, यानी ये कम है ऐसा क्यों कहते हो? उसका समाधान, अपकर्षण उत्कर्षण भागहार का गुण संक्रमण भागहार के साथ गुणा कर जो लब्ध आवे। देखो ये जो भागहार होते हैं ना उसका प्रमाण अलग अलग होता है, भागहार में भी अल्प बहुत्व होता है। जैसे सबसे छोटे में छोटा कौन सा भागहार है?
अपकर्षण भागहार।
सर्व संक्रमण भागहार कितना है? एक है।
हाँ,
नहीं समझे?
हाँ, हाँ,
मान लेते एक लाख परमाणु है उसको एक से भाग दिया, भागहार एक है तो संख्या कितनी होगी? जितनी है उतनी सारी संक्रमित हो जाएगी, उसको कहेंगे सर्व संक्रमण भागहार। संख्या है एक, सेकंड नंबर पर उससे असंख्यात गुणा होता है गुण संक्रमण भागहार, यथायोग्य असंख्यात है, और उससे अपकर्षण भागहार उससे भी तीन नंबर पर है, ये अपकर्षण भागहार है। तो कहते हैं ये गुण संक्रम भागहार और अपकर्षण, अपकर्षण का जितने उतने उत्कर्षण भागहार है, इसलिए उसको एक साथ लिखते हैं। अकेले अपकर्षण भागहार लिखो तो भी चले। तो अपकर्षण उत्कर्षण भागार का गुण संक्रमण भागार के साथ गुणा करके जो लब्ध है, ये संख्या बड़ी हो गई ना अभी, ये संख्या, संख्या का हम कौन सी संख्या का गुणा करना है? तो भागार वाली जो कोई विशिष्ट संख्या है उसको गुणा करना है बस, और जो राशि आएगी उससे उत्पन्न हुई जो दो छासर सागरों की नाना गुणहानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि, क्या कहते हैं उनको गुणा करने पर क्या आएगा? देखो गुण संक्रमण भागार मल्टीप्लाइड बाय अपकर्षण भागार इज इक्वल टू दो छासर सागर की जो नाना गुणहानी शलाका है उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि। ये नाना गुणहानी शलाका किसको कहते हैं? जो एक जितनी स्थिति है टोटल उसको एक गुणहानि से भाग दो, यानी गुणहानि के आयाम से, एक गुणहानि से नहीं गुणहानि आयाम से भाग दो। मान लेते 48 स्थिति और हमारी एक गुणहानि 8 की,
छह नाना गुणानी होगा।
तो नाना गुणानी कितनी होगी? छह होगी। और अन्योन्य अभ्यस्त राशि किसे कहना? तो अभी नाना गुणानी छह आई ना, तो छह बार दो लिख कर आपस में गुणा करो, दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो गुना दो, कितने हो जाएगा? हाँ 64। तो ये क्या कहलाएगी? नाना गुणानी की अन्योन्य अभ्यस्त राशि। यहाँ क्या बता रहे हैं? गुण संक्रमण भागार, गुणा अपकर्षण भागार, ये तो भागार ही वाली संख्या ही होती है, किसी को भाग नहीं देना है। ये जो संख्या है ये दोनों का गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा?
दो
छियासठ सागर की जितनी नाना गुणानी शलाका है उसकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि मिलेगी। अब उसे दीर्घ उद्वेलन काल के भीतर नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य अभ्यस्त राशि से और अंतिम फाली के आयाम से गुणित करने पर जो लब्ध आवे उसका डेढ़ गुणानी मात्र एकेंद्रियों के समय प्रबद्धों में भाग देने पर इसका प्रमाण आता है। और यह द्रव्य उपरिम प्रकृतियों के प्रदेशों से स्तोकतर है, यह न्याय सिद्ध है। अब क्या कहना चाहते हैं? इस गुण संक्रमण क्यों लिया, अपकर्षण उत्कर्षण क्यों लिया? सम्यक प्रकृति का जो द्रव्य तैयार हुआ था वो गुण संक्रमण भागार के भागार से मिथ्यात्व के द्रव्य को भाग देने पर जो आया उतना उसका द्रव्य हुआ। दो बार छियासठ सागर काल तक वो रहा तो उतना उसका गल गया, तो उसके लिए वो अन्योन्य अभ्यस्त राशि वगैरह उसके भाग देना चाहिए। अब जब मिथ्यात्व में चला जाता है दीर्घ उद्वेलना काल, तो दीर्घ उद्वेलना काल में भी क्या हो रहा है? वो भी गल रहा है, गल भी रहा है और वहां भी कुछ उद्वेलना कांडक भी हो रहे हैं। तो वहां की जो अन्योन्य अभ्यस्त राशि है और अंतिम फाली का जो आयाम है, अंतिम फाली का आयाम है नहीं, वहां भी स्थिति कांडक जैसे कांडक होते हैं, तो अंतिम वाला जितना लंबा होगा पल्ले का संख्या जो कोई यथायोग्य उसका जो आयाम है उसका गुणित करने पर जो लब्ध आवे डेढ़ गुणानी मात्र एकेंद्रियों के समय प्रबद्धों में भाग देने पर इसका प्रमाण आता है। सम्यक प्रकृति का प्रमाण कैसे निकाला उन्होंने? तो सम्यक प्रकृति का कितना है समय? तो समय प्रबद्ध कितना? डेढ़ गुणानी मात्र समय प्रबद्ध। किसका लिया ये? मिथ्यात्व का। कहां से लिया? उसको एकेंद्रिय जीवों में कर्म स्थिति प्रमाण घुमाया तो पहले जितनी बांधी थी वो तो उसकी चली गई। अब उसके सत्ता में जो द्रव्य है वो एक इंद्रियों के समय प्रबद्ध है।
ये सम्यक तो का है ना?
सम्यक तो मिथ्यात्व में से हुआ है ना? मिथ्यात्व के द्रव्य को भाग देंगे तो सम्यक्तो का द्रव्य आएगा। मिथ्यात्व में से बन गए हैं परमाणु। तो मिथ्यात्व का कितना है उसके पास? जब क्षपित कर्मांशिक एक इंद्रियों से निकला था तो उसके पास कितना मिथ्यात्व का द्रव्य था? तो एक इंद्रियों के समय प्रबद्ध जितने उसमें
डेढ़ गुणानी प्रमाण,
तो डेढ़ गुणानी गुणा
समय
एक इंद्रियों का समय प्रबद्ध। अब जब उसने सम्यक तो प्राप्त किया तो पहले में पहले क्या इस द्रव्य को गुण संक्रमण भागार से भाग दिया तो उतना द्रव्य सम्यक प्रकृति रूप हुआ, बरोबर। फिर अपकर्षण भागार से भाग दिया, क्यों? क्योंकि वो मिथ्यात्व में से भी उसमें संक्रमित तो होता ही रहेगा ना, मिथ्यात्व में से उसमें चला जाएगा ना विद्या संक्रमण।
उत्कर्षण से भी मिथ्यात्व का द्रव्य सम्यक तो
मिथ्यात्व से सम्यक रूप नहीं होगा,
नहीं होगा।
हाँ, नहीं होगा। परंतु ये जो लिखा है ना दो छियासठ सागर, पहले अपकर्षण उत्कर्षण लिया क्योंकि जब सम्यक को प्राप्त किया था तब उसने अपकर्षण भी किया था
अंतर्मूर्त के लिए।
और फिर उसने अंतर्मूर्त के लिए और फिर उसने उसका गुण संक्रमण भी किया था। तो उन दोनों गुणाकार से गुणा करके जो दो छियासठ सागर की जो नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य व्यस्त राशि वहाँ तो उसका एक 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 निषेक गल गया है, जितना सम्यक प्रकृति रूप हुआ था उसका भी गलेगा ना वहाँ, दो छास्त्र सागर तक गल गया। अब उसके बाद वो मिथ्यात्व में आया, मिथ्यात्व में आने पर भी क्या हो रहा है, उद्वेलना हो रही है, कितना दीर्घ उद्वेलना काल में, तो वहाँ की भी अन्योन्य व्यस्त राशि से उसको भाग देंगे तो हमें वो मिल जाएगा। इसलिए कहते इसका द्रव्य सबसे स्तोक है, सम्यक प्रकृति का कितना द्रव्य बच गया है
उसमें से
वो निकालने के लिए इतना सारा गणित बताया। देखो यह सबसे स्तोक होता हुआ भी क्या लिखा है, असंख्या समय प्रबद्ध प्रमाण है, ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि नीचे के समस्त भागहार कलाप से समय प्रबद्ध की गुणकारभूत डेढ़ गुणहानी असंख्यात गुणी है। अभी जितने सारे भागहार देखे थे उससे जो समय प्रबद्ध की जिसके हम गुणा करते हैं, किससे करते हैं, डेढ़ गुणहानी से, डेढ़ गुणहानी गुणा समय प्रबद्ध, तो यहाँ जो डेढ़ गुणहानी का जो प्रमाण है वो असंख्यात गुणा है, किससे, भागहार से, भागहार कलाप क्यों, क्योंकि अलग अलग भागहार हमने देखे, अपकर्षण भागहार, गुण संक्रमण भागहार, उद्वेलना के अलग अलग, उससे हमेशा देखो कितना भी क्यों ना खिर गया हो वो अंतिम पाली वगैरह में कितना रहता है, डेढ़ गुणहानि गुणित समय प्रबद्ध इतना रहता है। शंका,
एक
निषेक वाला लिया है
तो एक समय प्रबद्ध ही होगा ना, कि असंख्यात समय प्रबद्ध,
एक समय प्रबद्ध तो नहीं होगा।
अच्छा उद्वेलना का जो कांडक होके जो द्रव्य नीचे आता है,
यह सबसे स्तोक होता हुआ भी असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण है।
अभी वही जीव आवली के पूर्व सम्यक तो प्राप्त करेगा, अच्छा वो तो उत्सव सम्यक तो प्राप्त करेगा, तो वहाँ पे वापस जो द्रव्य जो उत्पन्न होगा सम्यक तो का,
देखो गुण संक्रमण रूप से इसमें आया था ना,
हाँ।
तो कितने समय प्रबद्ध इसमें वैसे आ जाएगी,
हाँ।
और इसके भी उद्वेलना कांडक हुए है,
हाँ।
उसकी फाली उसके अपने में ही जाती भी पर रूप से भी होगी, मिथ्यात्व रूप से, और अपने में भी स्थिति कांडक घात होगी उसके, इसलिए उसके असंख्यात समय प्रबद्ध का। देखो शंका, समय प्रबद्ध के गुणकार के कारण के साथ जघन्य दंडक कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा करके इस मूल पद के स्तोक पने के कारण को नहीं कहने वाले सूत्रकार पूर्वापर विरोध रूप दोष के भागी ठहरते हैं। क्या कहते हैं, ये मूल पद का जो स्तोक पने का कारण नहीं कह रहे हैं, एक कह तो दिया ना, क्योंकि सूत्र में क्या प्रतिज्ञा की थी, कारण के साथ सकारण कहेंगे, तो क्या यहाँ कारण नहीं कह रहे ऐसा उसका कहना है। शंका का समाधान, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सूत्रकार ने स्तोक रूप सम्यक्त्व के द्रव्य से अन्य प्रकृतियों के द्रव्य के बहुत होने का कारण कहेंगे ऐसी प्रतिज्ञा की है, अथवा यहाँ पर कारण सुगम है इसलिए आचार्य भट्टारक ने उसका कथन नहीं किया है। आगे
तो यहाँ पे जो ये बताया है कि सम्यक्त्व का जो एक समय प्रबद्ध है, असंख्यात समय प्रबद्ध है, वो मिथ्यात्व रूप होकर सत्ता में से निकल रहा है, बराबर, तो मिथ्यात्व का समय प्रबद्ध है केंद्रीय में, उससे सम्यक्त्व का समय प्रबद्ध असंख्यात वा भाग होगा, इसे समझना चाहिए।
समय प्रबद्ध हम वैसे समय प्रबद्ध का जो प्रमाण है उसको लेना है, क्योंकि ये तो बंधने वाली प्रकृति है ही नहीं है,
हाँ।
समय प्रबद्ध की तो हम संख्या के साथ कंपेयर कर सकते हैं,
हाँ, हाँ।
कि समय प्रबद्ध का इतना प्रमाण है और इसमें इतने असंख्यात समय प्रबद्ध जितना माल है, ऐसा तो कह सकते हैं,
हाँ।
तो उसकी उद्वेलना होती है तब उसमें स्थिति कांडक भी होते रहते ना,
हाँ।
नीचे के प्रदेश भी ज्यादा आते, हाँ। रहते हैं, अपकर्षण वगैरह भी होता रहता है उसका,
तो
दो समय वाली एक एक निशिक, एक स्थिति या एक निशिक। सम्मा मिच्छते जहन्य पदेश संत कम्मम असंख्य जगुणम, उससे सम्यक मिथ्यात्व में जघन्य प्रदेश सत्कर्म असंख्यात गुणा है, क्योंकि सम्यक्त्व प्रमाण एक एक स्थिति से, सम्यक मिथ्यात्व प्रमाण एक एक स्थिति असंख्यात गुणी उपलब्ध होती है। क्या कहना चाहते हैं? जब हमने देखा था ना, जब जब सम्यक्त्व बनता है तो जितने सम्यक्त्व में परमाणु बनते हैं उससे असंख्यात गुणा सम्यक मिथ्यात्व में रहते हैं। अब उद्वेलना में भी उल्टा चलेगा ना, सम्यक्त्व के परमाणु भी मिथ्यात्व में आ रहे हैं और कुछ तो सम्यक मिथ्यात्व रूप भी चले जाएंगे। शंका, उभयत्र भज्यमान यानी जिसको भाग देते हैं और भागहार राशि के समान होते हुए सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व की समान स्थितियों में स्थित गोपुच्छाएं इस प्रकार विसदृश कैसी होती है? उनकी स्थिति तो समान है, क्योंकि जब सम्यक्त्व प्राप्त किया था तो दोनों की स्थिति अंत कोड़ा कोड़ी सागर हुई। उपशम सम्यक्त्व की बात करें तो एक एक निषेक चला जाएगा तो दोनों में ही चला जाएगा, तो दोनों की स्थिति तो समान होगी, फिर भी विसदृशता क्यों है ये पूछना चाहते हैं। उसका तो कारण हमने पहले भी देखा था। समाधान, क्योंकि मिथ्यात्व में से सम्यक्त रूप परिणमन करने वाले द्रव्य के गुण संक्रमण भागहार से उसी में से यानी सम्यक्त्व में से, सॉरी मिथ्यात्व में से सम्यक मिथ्यात्व रूप संक्रमण करने वाले प्रदेश समूह का गुण संक्रमण भागहार असंख्यात गुणाहीन उपलब्ध होता है। भागहार असंख्यात गुणाहीन है, परमाणु असंख्यात गुणे हो गए, यानी जब औपशमिक सम्यक्त्व प्राप्त किया था, गुण संक्रमण हुआ था, तो सम्यक प्रकृति रूप में जो गुण संक्रमण होता था उससे सम्यक मिथ्यात्व में जो गुण संक्रमण हो वो असंख्यात गुणा है और उसका भागार असंख्यात गुणाहीन है। और यह असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि गुण संक्रमण के पहले प्रथम समय में मिथ्यात्व में से जो प्रदेश समूह सम्यक्त्व में संक्रमण को प्राप्त होता है वह स्तोक है, उसी समय में सम्यक मिथ्यात्व में संक्रमण को प्राप्त होने वाला प्रदेश समूह असंख्यात गुणा है, इस सूत्र से उसकी सिद्धि होती है। और भागहार विशेष के बिना द्रव्य का उस प्रकार का होना बन नहीं सकता, क्योंकि विरोध आता है, जितना भागहार है उतने परमाणु संक्रमित होते हैं। यहाँ पर सम्यक्त्व के द्रव्य से सम्यक मिथ्यात्व का असंख्यात गुणा द्रव्य लाने के लिए सम्यक मिथ्यात्व के गुण संक्रमण भागहार से भाजित सम्यक्त्व का गुण संक्रमण भागहार गुणकार है। कितने गुणा है, थोड़ा हम अपने संदृष्टि लगाने की कोशिश करेंगे। हम देखें ना, असंख्यात गुणा है ऐसा जब कहते हैं तो मान लेते हैं यहाँ 64 परमाणु दी तो यहाँ 16 दी, चार गुणा है ये। अभी मूल में ऐसा कोई जो मूल मिथ्यात्व में से इतने बने और ये इतने बने, तो यहाँ का जो भागहार था और यहाँ का भागहार, तो यहाँ क्या कह रहे देखो, ओरिजिनल ये संख्या तो उतनी ही है, अभी इसके लिए हम ऐसा कोई 64 यहाँ 640 परमाणु लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, मैं देखती हूँ ये फिट बैठता है कि नहीं मुझे भी पता नहीं, तो 640 में से 64 संख्या आती है
10,
तो इसको भाग दिया हमने 10 से, इसका भागहार है 10 और 16 निकालने के लिए भागहार है 40, बराबर 640 में से 10 का भाग देंगे तो 64 आते हैं, 640 को 40 का भाग देते हैं तो 16 आते हैं, बराबर है ना। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ये 16 से 64 कितने गुना है,
चार गुना।
तो ये जो भागहार है इसका भागहार, उसको इसके भागहार से भाग देना, 40 को 10 से भाग देना तो 4 आता है, यही यहाँ बता रहे हैं। फिर पढ़ेंगे हम इसको। हमने क्या देखा था, जब सम्यक तो प्राप्त होता है उपशमी सम्यक, तो शुरू में गुण संक्रमण होता है, जितना द्रव्य सम्यक मिथ्यात्व में जाता है उससे असंख्यातवा भाग सम्यक्व में जाता है। हम मान लेते 64 परमाणु यहाँ है और 16 परमाणु यहाँ है, तो ऐसे अलग अलग क्यों, क्योंकि उसका भागहार अलग अलग है। सम्यक मिथ्यात्व का भागहार असंख्यात गुणाहीन है और सम्यक्व का भागहार असंख्यात गुणा है। इससे जैसे हम मान लेते ये 640 परमाणु है मिथ्यात्व के, उसमें से सम्यक मिथ्यात्व रूप 64 हुए तो भागहार का प्रमाण है 10, और 16 परमाणु सम्यक प्रकृति रूप हुए तो भागहार का प्रमाण है 40, बराबर आता है ना। अब यहाँ क्या कह रहे, देखो यहाँ पर सम्यक्व के द्रव्य से, समाधान का दूसरा परिग्रह, सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात गुणा है उसको लाने के लिए सम्यक मिथ्यात्व के गुण संक्रमण भागहार से भाजित सम्यक्व का गुण संक्रमण भागहार है, गुण संक्रमण भागहार उसका गुणकार है।
मैंने
अभी जो हमने देखा इसका भागहार है 40 ये लाने के लिए, और इसका भागहार है 10, तो इस 40 को 10 से भाग देंगे तो 4 आता है, असंख्यात का प्रमाण 4 आया, ये गुणकार का प्रमाण आया। तो ये भागहार को भाजित किया तो हमें 4 संख्या मिली, तो ये 16 से 64 कितने गुना है, तो 4 गुना है। ये हमने कैसे निकाला, भागहार एक भागहार को दूसरे भागहार से भाग के देखे। यानी यहाँ क्या कहना चाहते हैं, यहाँ लिखा है ना, स्पष्ट लिखा है, सम्यक मिथ्यात्व के गुण संक्रमण भागहार से भाजित सम्यक्त्व का गुण संक्रमण भागहार, वो उसका गुणकार है। कितने गुणा है तो भागहारों का आपस में भाग दो तो संख्या विल बी रिवर्स, नहीं समझे। सम्यक्त्व का भागहार 4 गुना है और सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य 4 गुना है, भागहार का प्रोपोर्शन उल्टे प्रोपोर्शन में है, भागहार उल्टे प्रोपोर्शन में है। सम्यक्त्व का भागहार 40 है और इसका 10 है, और संख्या इसकी 16 है इसकी 64
है।
ख्याल में आती है ना, को हम 10 से भाग देते हैं तो 64 आता है, और 640 को 40 से भाग देते हैं तो 16 आते हैं, ये सम्यक प्रकृति। इसलिए 40 / 10 = 4 वही गुणकार है। किसका गुणकार, सम्यक का, तो 16 × 4 = 64। ये यहाँ के वाक्य का अर्थ हमें केवल समझना है। अब तीसरे लाइन, विशेष घात के वश से सम्यक्त्व के द्रव्य के पहले ही जघन्य हो जाने पर उससे आगे पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थान जाकर जघन्यपने को प्राप्त हुआ सम्यक मिथ्यात्व का प्रदेश समूह उससे असंख्यात गुणा कैसे हो सकता है, क्योंकि आगे आगे उसमें एक एक गोपुच्छ विशेषों की हानि देखी जाती है, इसलिए इसका असंख्यात गुणा होना समीचीन नहीं प्रतीत होता। इस प्रकार के संदेह से जिसका हृदय घुल रहा है उस शिष्य के अभिप्राय की आशंका कर सूत्र का पूछा सूत्र कहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? ये तो बता दिया, जब उन्होंने गुण संक्रमण किया था तो ये गुणकार बनता है, उसने मान लिया शंकाकार है। तो कोई शंकाकार ऐसा भी पूछेगा, इसलिए स्वयं आचार्य प्रश्न पूछ रहे हैं। क्या पूछ सकता है? अभी इतना तो माल गल गया उसका, तो अभी भी ये असंख्यात गुणा कैसे हो सकता है, क्योंकि 266 सागर काल तक भी घुमाए है ना, और एक एक को पूछे विशेष कम हो गया, तो उसका असंख्यात गुणा प्रतीत नहीं होता है। तो बच्चे केन कारण है ना, कारण हुआ है, कारण है ना।
ये पे पूछा ऐसा है ना कि सम्यक विख्यात्व का द्रव्य जो जब भी मिनिमम होता है वो पल्य के असंख्यात में भाग पहले होता है, तो वो पल्य
के सम्यक विख्यात्व का नहीं, सम्यक्त्व का
पहले, सम्यक विख्यात्व का
पहले सम्यक्त्व चला जाएगा, बाद में सम्यक विख्यात्व। उद्वेल नाम उल्टा है ना, केण कारण है ना, रह गया सूत्र में ऊपर। इसका कारण क्या है? इस सूत्र का भावार्थ यह है कि यदि सम्यक मिथ्यात्व के ऊपरी उद्वेलन काल के भीतर असंख्यात गुणहानियां संभव होवे, तो उनकी अन्योन्य अभ्यस्त राशि गुण संक्रमण भागार के क्या समान होती है, या संख्यात गुणी होती है, या असंख्यात गुणी होती है, या संख्यात गुणहीन होती है, या असंख्यात गुणहीन होती है, यह निश्चय करना शक्य नहीं है। और ऐसी अवस्था में इसका असंख्यात गुणा होना कैसे जाना जाता है, ये स्वयं पृच्छा सूत्र का ही अर्थ खोल के बता रहे हैं। यानी अन्योन्य अभ्यस्त राशि जो यहाँ हो गई कभी उद्वेलना में, तो वो गुण संक्रमण भागार के समान है क्या, उससे कम है क्या, है उसका प्रपोर्शन क्या है, वो पता नहीं है। तो ये आप यहाँ असंख्यात गुणा है ये कैसे कह सकते हो? वहाँ असंख्यात गुणहानियां नहीं है, नहीं ही है, ऐसा कहना युक्त नहीं है, क्योंकि उनके अभाव का ग्राहक प्रमाण नहीं उपलब्ध होता। इस प्रकार विरुद्ध बुद्धि वाले शिष्य के द्वारा एक एक विशेषण भी अच्छा देते हैं। विरुद्ध बुद्धि वाले शिष्य कारण विषय पृच्छा करने पर कारण की प्ररूपणा द्वारा उसके संदेह का निराकरण करने के लिए आचार्य आगे का सूत्र कहते हैं। यानी वो प्रश्न पूछा है, वो प्रश्न को ही पहले खोलकर बताए उन्होंने। शिष्य अभी भी मानने को तैयार नहीं कि वो असंख्यात गुणा है, इसलिए अभी कारण की चर्चा करेंगे। सम्मत्ते उवेलिदे सम्मा मिच्छत्तम जेन कालेन उवेलेदि एदम्मि काले एकम्पि पदेषु गुणहानि ठाणान्तरं नत्थि एदेन कारणे। क्या कहते हैं? इसका कारण यह है कि सम्यक्त्व की उद्वेलना होने पर जितने काल में सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना होती है, उस काल के भीतर एक भी प्रदेश गुणहानि स्थानांतर नहीं है। कितने काल में होती है? तो पल्ले के असंख्यात भाग में होती है। सम्यक्त्व की उद्वेलना हो जाने पर सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना कितने काल में होती है? पल्ले के असंख्यात भाग काल में। तो कहते वो जितना काल है
वहाँ पे एक भी,
उस काल में एक भी प्रदेश गुणहानि स्थानांतर नहीं, एक गुणहानि भी नहीं पूरी होती, उससे भी ये छोटा है। एक गुणहानि का आयाम है, उससे भी इसका काल कम है, ये बताना चाहते हैं। अब फिर इसका एक्सप्लेन करेंगे। इस सूत्र का अवयव रूप अर्थ अथवा अर्थ सुगम है। यहाँ पर पद संबंध इस प्रकार करना चाहिए। सम्यक्त्व की उद्वेलना हो जाने पर की बात है, जितने काल द्वारा सम्यक मिथ्यात्व की उद्वेलना करता है, इस काल में यतः एक भी प्रदेश गुणहानि स्थानी स्थानांतर नहीं है। ये लंबा चौड़ा नाम है ना, प्रदेश गुणहानि स्थानांतर, अपनी भाषा में एक भी गुणहानि नहीं होती। प्रदेश गुणहानि का अर्थ क्या है? निषेक निषेक प्रति जो कम होता चला जाता है, जहाँ जाके आधा होता है वो पूरा जो निषेकों का आयाम है उसको हम एक गुणहानी कहेंगे। ये जो पल्ले का असंख्यात भाग काल लगता है वो गुणहानी आयाम से भी छोटा काल है, ये बात यहाँ बताना चाहिए। इस कारण से सम्यक्त्व के द्रव्य से सम्यक मिथ्यात्व के द्रव्य का असंख्यात गुणा होना विरोध को प्राप्त नहीं होता। यद्यपि सम्यक्त्व का सत्कर्म पहले ही जघन्य हो गया है और उससे पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण स्थान आगे जाकर सम्यक मिथ्यात्व का प्रदेश कर्म जघन्य हुआ है, तो भी सम्यक्त्व के द्रव्य से सम्यक मिथ्यात्व का द्रव्य असंख्यात गुणा है यह बात बन जाती है, क्योंकि वह काल एक गुणहानि के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। ओ
तो यहाँ पे क्या, ये जो कांडक घात होते हैं पहले उद्वेला कांडक, वो सम्यक्त्व का जब द्रव्य एक आवली प्रमाण रहेगा तभी सब कांडक रुक जाएंगे, क्योंकि कांडक रूप जो द्रव्य नीचे आता है वो तो गुणादि रूप से निकल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो बता रहे हैं, क्योंकि एक गुणादि में पल्य वो जो प्रमाण बताया है वहाँ पे एक भी कांडक कंप्लीट नहीं होगा, तो कांडक क्या उसके
कांडक कंप्लीट नहीं, गुणादि कंप्लीट नहीं होगी क्या?
हाँ, तो उसके पहले कांडक दोनों का रुक गया है इसे समझ लेना चाहिए।
नहीं नहीं नहीं, वह काल एक गुणादि के असंख्यात भाग प्रमाण है, इसलिए उतने स्थान जाकर भी बहुत थोड़े गोपुच्छा विशेषों की ही हानि देखी जाती है।
गोपुच्छा विशेष की हानि होती है तो
उसमें ही विषय कम हो जाते हैं।
तो वहाँ पे एक भी कांडक, उसके पश्चात जब सम्यक्त्व का मिनिमम हो गया उसके पश्चात एक भी कांडक नहीं हुआ।
कांडक तो होते ही है, बिना कांडक के नहीं होते। लास्ट विचरम उद्वेलना,
तो यहाँ पे तो ऐसे इतना ही बताया ना कि इतनी गोपुच्छा विशेष निकल जाते है, तो गोपुच्छा तो गुणित प्रमाण में नहीं निकले इसे बताना चाहते है।
गोपुच्छा विशेष कैसे हानि होती है? मिथ्यात्व रूप से टर्न होती है, मिथ्यात्व का
मिथ्यात्व रूप से। हाँ, तो वहाँ पे जो सम्यक मिथ्यात्व का जो द्रव्य था उसमें कांडक हो जाएगा तो ज्यादा द्रव्य नीचे आएगा, वहाँ पे वो गुणहानि वो गुणित
मिथ्यात्व रूप से होते रहेंगे, फिर भी वो कितना है, एक गुणहानि नहीं होती उसकी, यानी वो जितना ऊपर का निषेक है उसका आधा भी नहीं होता है, उसका असंख्यात्व भाग
पानी जाता है,
यानी वो पल्ले का असंख्यात भाग होने पर भी वो काल बहुत छोटा है, क्योंकि एक भी कांडक होता है तो वो पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण होता है अंतिम कांडक।
इसीलिए मैंने पूछा है कि यहाँ पे पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण निषेक निकल जाते हैं और अंतर्मूल प्रमाण कांडक का प्रमाण होता है। कांडक का काल कितना है? अंतर्मूल पे एक एक कांडक होते है,
कांडक होने का काल अंतर्मूल है और कांडक का प्रमाण तो जितने
नहीं, कांडक का प्रमाण तो पल्ले का असंख्यात भाग आ गया है। हाँ। तो यहाँ पे अंतर्मूल, यहाँ पे अंतर तो अंतर्मूल तो बहुत आ जाएंगे, तो उतने अंतर्मूल गए तो वहाँ पे एक भी कांडक हुआ नहीं, इससे ले सकते हैं।
एक भी कांडक हुआ ऐसा ऐसा तो नहीं कह सकते हम,
तो
नहीं तो हाँ, बहुत ज्यादा है पल्ले के असंख्यात विभाग में। क्योंकि क्या है, उद्वेलना का अपना प्रकरण हुआ नहीं ना डिटेल में, उसके कांडक होते हैं क्या होता है उसकी बात कहाँ आई अपने?
नहीं हुआ, उद्वेलना कांडक का प्रमाण,
कांडक वगैरह वो
डिटेल में कुछ बाकी नहीं है,
उसका संक्रमण भागहार अपने को पता है। उद्वेलना भागहार वैसे बहुत बड़ा है, देखो क्या कहते हैं, वह काल एक गुणहानि के असंख्यात भाग प्रमाण है, इसलिए उतने स्थान जाकर भी बहुत थोड़े गोपुच्छा विशेषों की हानि रखी जाती है। यहाँ से तो ऐसे प्रतीत होता है कि उसके कांडक नहीं होते,
नहीं होते वहाँ पे कांडक, जब भी सम्यक्त्व का रुक गया तो इसका भी रुक गया, ऐसे ही समझना है।
अभी जो है यह शंका, इस अध्वान में प्रदेश गुणहानि स्थानांतर नहीं है किस प्रमाण से जाना जाता है?
यही है ना, शंका वही है ना,
इसी जिन वचन से जाना।
हाँ, यहाँ पे गुणानि स्थानांतर नहीं है, ये किस प्रमाण से जाना जाता है, वही है ना,
वो नहीं है शंका। देखो नीचे आए भी
तो गुणित प्रमाण में नहीं,
आधे होने का सवाल ही नहीं है, गुणहानि होने का सवाल ही नहीं ना। नीचे अगर प्रदेश आते हैं
गुणहानि नहीं
तो गुणहानि नहीं होती है, तो गुणहानि नहीं होती इसलिए क्या सबूत है आपके पास, ये पूछ रहा है। कांडक नहीं होते ये नहीं पूछ रहा। तो समाधान इसी जिन वचन से जाना जाता है, और एक प्रमाण दूसरे प्रमाण की अपेक्षा नहीं करता, क्योंकि ऐसा करने पर अनवस्था दोष आता है। इसकी प्रमाणता साध्य सम है यह कहना भी युक्त नहीं है, क्योंकि अन्यथा वह जिनवचन नहीं बन सकता, इसलिए उसकी प्रमाणता सिद्ध है। क्या कहते हैं, प्रमाणता सिद्ध है, साध्य ने कहा, साध्य ने साध्य करने लायक, ऑलरेडी सिद्ध है। शंका, साध्य और साधन एक ही कैसे हो सकता है, ऐसी शंका करनी नहीं चाहिए, क्योंकि दीपक और प्रमाण आदि स्वपर प्रकाशक होते हैं। देखो दीपक की उपमा दी, जैसे दीपक स्वयं स्वपर प्रकाशक है, वैसे प्रमाण भी स्वपर प्रकाशक होते हैं, इनसे उस शंका का परिहार हो जाता है। इसलिए सूत्र प्रमाण होने से प्रमाणांतर की अपेक्षा नहीं करता, यह सिद्ध हुआ। सूत्र इटसेल्फ प्रमाण है, उसको अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमने किस किस के जगन्य देखे, प्रदेश
सम्यक्त्व, सम्यक
मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व। अब आगे, अनंतानुबंधी माने जहन्य प्रदेश संत कम्मम असंख्य गुणम, उससे अनंतानुबंधी मान में जगन्य प्रदेश सत्कर्म असंख्यात गुणा है। ये कहाँ पर होता है जगन्य, उसके लिए जो कोई कंडीशंस पहले बताए वो सब
बांधा, और पीछे 132 सागर काल तक रहा और पीछे 20।
यहाँ पर इससे अनंतर पूर्व कहा गया देशामर्शक सूत्र आदि दीपक भाव रूप है। आदि दीपक समझते हो
सब?
हाँ भानु भाई, ये आदि दीपक क्या होता है, कोई अन्य भी दीपक होता है?
अंत दीपक
और मध्य दीपक भी होता है, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक, कभी सुना है कि नहीं सुना? नहीं सुना
नंबर
का भाई। आदि दीपक क्या होता है, जैसे बहुत लंबा कॉरिडोर है, अंधेरा है, और हमने उसमें लाइट ऑन कर दिया, बहुत सारे लाइट है वहाँ, तो पहला दीपक जलाया तो उसका प्रकाश कहाँ तक चले जाएगा?
पूरे कॉरिडोर,
पूरे में चले जाएगा ना। हम बाहर से आते हैं घर में तो पहले बाहर का दवा जलाते तो अंदर तक प्रकाश हो जाता है, या सेंटर वाला लगाएंगे तो भी सब जगह होगा, और लास्ट वाला लगाएंगे तो भी सब जगह प्रकाश होगा। ऐसे ये जो कोई शब्द है आदि दीपक का अर्थ है, पहले बताया वो सब में लागू होता, वो आदि होगा। कभी कभी लास्ट में बताएंगे और वो सब में लागू होता, उसको अंत दीपक कहेंगे। आपको कोई ऐसा अंत दीपक मालूम है? बोलो जय में। हाँ, नमो लोए सौ साहुणम, तो लोए सौ शब्द जो है, तो नमो लोए सौ अरिहंताणम, नमो लोए सौ सिद्धाणम, ऐसे हर एक में नमो लोए जो है ना, नमो तो हम कहते हैं हर बार, परंतु लोए सौ नहीं कहते, वो सब में लगा लेना। तो यहाँ आदि दीपक भाव रूप है, कौन सा? देशामर्शक सूत्र, इसलिए उस द्वारा सूचित होने वाले कारण का कथन करते हैं। यथा डेढ़ गुणहानि गुणित एकेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध में, यह हर बार क्षपित कर्मोंशिक को लिया है, और उसने जो त्रस संबंधी जो कर्म स्थिति बांधी थी वो एकेंद्रियों में पूरी की, क्योंकि लंबे काल तक एकेंद्रियों में रहा कर्म स्थिति प्रमाण, तो जब अभी त्रस में आएगा तो एकेंद्रिय का समय प्रबद्ध लेके आए हैं। उसके सत्ता में क्या है? एकेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध मल्टीप्लाइड बाय डेढ़ गुणहानि, वही यहाँ लिखा, डेढ़ गुणहानि गुणित एकेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध में अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागहार अधप्रवृत्त भागहार और अंतिम फाली से गुणित दो छासर सागर के भीतर की नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य व्यस्त राशि, इन सब का भाग देने पर अनंतानुबंधी मान का असंख्यात समय प्रबद्ध प्रमाण जघन्य द्रव्य आता है। वो भी असंख्यात समय प्रबद्ध हो जाता है, क्योंकि क्या देखते हैं हम यहाँ पर भी, अनंतानुबंधी की विसंयोजना होती है तो पहले में पहले वो एकेंद्रिय में से आया है। जब औपशमिक समय तो प्राप्त करेगा तो क्या होगा,
गुणसम,
उसमें भी गुणश्रेणी होगी, अपकर्षण भी होगा ना उसमें, अपकर्षण होगा, स्थिति कांडक सब कुछ उसमें भी होगा था, सभी कर्मों में होता है। तो अंतर्मूल से भाजित अपकर्षण उत्कर्षण भागार वहां लिया, फिर अधप्रवृत्त भागार, यह अधप्रवृत्त संक्रमण होता है उसके लिए अधप्रवृत्त भागार लिया, और अंतिम फाली से गुणित दो छासर सागर के भीतर नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य व्यस्त राशि, इन सबका भाग लिया। तो इतने लंबे काल तक, दो छासर सागर काल तक,
एक एक निशेक,
हाँ एक एक निशेक उसका गलता गया, उसका भी हिसाब लगाया। तो अभी कितना बचेगा, तो कहते हैं अनंतानुबंधी मान का द्रव्य आएगा, परंतु यह सम्यक मिथ्यात्व के जघन्य द्रव्य से असंख्यात गुना है, क्योंकि वहां पर यहां कहे गए समस्त भागहार तो है ही, साथ ही दीर्घ उद्वेलना काल के भीतर नाना गुणानी शलाकाओं के अन्योन्य व्यस्त राशि रूप भागहार अधिक उपलब्ध होता है। यदि कोई आशंका करे कि वहां पर अधप्रवृत्त भागहार नहीं है, जो हमने यहाँ कहा है उसका तो नाम वहां नहीं आया था, इसलिए उसके उस प्रकार के मानने में विरोध आता है, तो ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी पूर्ति स्वरूप वहां पर सर्वोत्कृष्ट गुण संक्रमण भागहार उपलब्ध होता है। यहाँ अधप्रवृत्त भागहार लिया तो वहां गुण संक्रमण भागहार, वो भी सबसे बड़ा वाला। यदि कहा जाए कि अधप्रवृत्त भागहार से गुण संक्रमण भागहार असंख्यात गुणाहीन होता है, सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि उस प्रकार को प्रतिबंध करने वाला अधप्रवृत्त भागहार असंख्यातवे भाग प्रमाण है, यानी उसमें भी छोटे वाला अवेलेबल है, अधप्रवृत्त भागहार में भी असंख्यात गुणाहीन वाला भागहार है। गुण संक्रमण भागहार का प्रतिभागी होने से दीर्घ उद्वेलना काल के भीतर नाना गुणानी शलाकाओं की अन्योन्य व्यस्त राशि असंख्यात गुणी है, और अनंतानुबंधी विसंयोजना की अंतिम फाली से उद्वेलना की अंतिम फाली असंख्यात गुणी उपलब्ध होती है। इतना ही बात यहाँ बताना चाहते हैं, विसंयोजना की अंतिम फाली से सम्यक मिथ्यात्व की जो अंतिम फाली है
असंख्यात,
हाँ असंख्यात गुणी है, फाली निकल गई ज्यादा। अभी इसका जो द्रव्य है ये ज्यादा लिखा है ना यहाँ पर, यह भी किस प्रमाण से जाना जाता है, तो नरक गति मार्गना से संबंध रखने वाले जघन्य स्थिति संक्रमण अल्प बहुत्व के प्रकरण में, ये स्थिति संक्रमण का अल्प बहुत्व अभी हम बहुत पहले पढ़ चुके थे, अनंतानुबंधी की विसंयोजना की अंतिम फाली में से जघन्यपने को प्राप्त हुआ सम्यक मिथ्यात्व का जघन्य स्थिति संक्रम असंख्यात गुणा है, ऐसा कथन करने वाले सूत्र से जाना जाता है। तथा करण परिणामों के द्वारा घात को प्राप्त हुई अनंतानुबंधी की अंतिम फाली से, जब विसंयोजना होती है तो करण परिणाम है, करण परिणाम किसको कहते हैं, अधप्रवृत्त,
अपूर्वकरण
और अनिवृत्तिकरण, उससे मिथ्या दृष्टि संबंधी परिणामों के द्वारा घात होकर शेष बची सम्यक मिथ्यात्व की अंतिम फाली असंख्यात गुणी होती है, यह न्याय सिद्ध बात है। क्योंकि वहाँ तो विशुद्धि की बात है और यहाँ द्रव्य ज्यादा रह गया है, ये बात सिद्ध होती है। इसलिए ही यहाँ पर व्याख्यानाचार्यों के द्वारा सर्वोत्कृष्ट उद्वेलना काल की अन्योन्य बस्त राशि से असंख्यात गुणा कहा गया, गुणकार विरोध को प्राप्त नहीं होता। गुण संक्रमण भागार से भाजित अधप्रवृत्त भागार से अंतिम फाली का गुणकार गुरु के उपदेश बल से असंख्यात गुणा स्वीकार किया गया है।
तो यहाँ पे तो ऐसे बता रहा है ना कि करण परिणाम में जो द्रव्य नीचे आता है वह असंख्यात गुणा है, कोई बता रहे है ना?
हाँ, यह गुणकार विकृति गोपुच्छा का अवलंबन लेकर कहा गया है। विकृति गोपुच्छा तभी होती है जब कांडक होते हैं। परमा से तो उससे भी असंख्यात गुणा है, जो पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण है। यहाँ पर गुणकार विकृति गोपुच्छा से असंख्यात गुणा है, क्योंकि गुण श्रेणी गोपुच्छा को छोड़कर उसकी यहाँ पर प्रधानता नहीं है। हमने अभी तक तीन देखे, कौन कौन से देखे?
सम्यक्त्व, सम्यक नित्यत्व। हाँ,
शुरू में हमने सम्यक प्रकृति को देखा,
सम्यक नित्यत्व देखा,
जगन्य का अल्पभव तो देख रहे हैं हम।
मान,
हाँ, सम्यक्त्व का पहला नंबर, फिर सम्यक मिथ्यात्व का दूसरा नंबर, अनंतानुबंधी मान वाले को लिया, फिर अब आगे कोहे जगन्य प्रदेश संत कम्मम विशेषायम, उससे अनंतानुबंधी क्रोध में जगन्य प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है। ये तो हमने पहले भी देखे थे ना, पहले मान को फिर क्रोध को लेते हैं। यहाँ पर पहले के सूत्र से अनंतानुबंधी पद को ग्रहण कर उसकी अनुवृत्ति करनी चाहिए। यद्यपि अनंतानुबंधी चतुष्क का स्वामी समान है, तो भी प्रकृति विशेष होने से विशेष अधिकपना विरोध को प्राप्त नहीं होता। ये तो हम पहले भी देख चुके हैं, चारों एक साथ बनते भी है और फिर निकल भी जाते हैं, फिर भी जब बनते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन इसी पद्धति से होता है। माया ये जहन्न प्रदेश संगमम विशेषायम, उससे अनंतानुबंधी माया में जगन्य प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है। लोभे जहन्न प्रदेश संतकम्मम विशेषायम, उससे अनंतानुबंधी लोभ में जगन्य प्रदेश सत्कर्म विशेष अधिक है। यह सूत्र सुगम है, क्योंकि विशेष अधिक का कारण प्रकृति विशेष है। मिच्छत्ते जघन्य प्रदेश संतकम्मम असंख्येज्य गुणम, उससे मिथ्यात्व में जघन्य प्रदेश सत्कर्म असंख्यात गुणा है।
जब भी हमने डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ये सर्वघाती का, तभी सबसे कम द्रव्य अप्रत्याख्यान में जाता है, पीछे प्रत्याख्यान में जाता है, पीछे संगलन में जाता है,
संगलन में सर्वघाती,
सर्वघाती में पीछे अनंतानुबंधी में जाता है और पीछे मिथ्यात्व में जाता है। तो यहाँ पे मिथ्यात्व का अनंत अनुबंधी से ज्यादा हो गया, क्योंकि मिथ्यात्व का तो अच्छा मिथ्यात्व संपूर्ण द्रव्य है,
जघन्य ज्यादा ही बता रहे हैं ना, और उसमें से जो सम्यक सम्यक मिथ्यात्व बने थे वापस उसमें आ गए। सॉरी, मिथ्यात्व में से मिथ्यात्व का जघन्य प्रदेश सत्कर्म अभी ये उसकी क्षपणा में होगा।
हाँ, तो सपना में
जब भी आया है और लास्ट में जाके सपना,
तो सपना में मिथ्यात्व का द्रव्य जब भी वो सपना करता है तभी उसमें से सम्यक्त्व और सम्यक मिथ्यात्व भी तैयार हुआ है।
हाँ,
और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन में हमने देखा मिथ्यात्व का सबसे कम द्रव्य जाता है, तो यहाँ पे ये
डिस्ट्रीब्यूशन में मिथ्यात्व में सबसे बहुभाग ज्यादा जाता है।
अच्छा, पहले नंबर पे मिथ्यात्व,
पहले नंबर पर मिथ्यात्व है, फिर अनंतानुबंधी का मान है, लोग है मिथ्यात्व। हाँ, और सोलह कक्षा में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
हाँ, प्रत्याख्यान में सबसे
तो बहुभाग तो मिथ्यात्व में जाता है सबसे ज्यादा। यहाँ भी अनंतानुबंधी से मिथ्यात्व में संख्यात यहाँ तो असंख्यात गुना हो गया, क्योंकि जब सपना होती है जो कोई, ये तो हमने जो अल्पभूत देखा था वो बंद के समय देखा था। अब यहाँ पर जो बात बनती है तो उसमें तो कितने वेरिएशन हो जाते हैं ना, जब बाय द टाइम इसका जघन्य हो जाए।
हमने इसे तो देखा था 17 भाग करते हैं और
कभी बंद के समय।
हाँ।
तो जघन्य कब होता है, उसकी सपना होगी कितने बार, तीन करण परिणाम मांडे, क्या क्या हुआ।
हाँ।
तो उसमें वेरिएशन कितने हो गए, उसमें कितने ही करण होते रहते हैं सारे। यहाँ लिखा ना, निच्छत्ते जघन्य प्रदेश संत कम्म असंख्य जगुण, उससे मिथ्यात्व में जघन्य प्रदेश सत्कर्म असंख्यात गुना है। ये 7 नंबर पर आए ना। शंका, अनंतानुबंधियों का भंग मिथ्यात्व के समान है इस प्रकार के स्वामित्व सूत्र के उपलब्ध होने से, क्योंकि हमने जब उसका स्वामित्व देखा था तो उसके समान है इतना ही बता दिया। समान स्वामी वाले अनंतानुबंधी लोभ और मिथ्यात्व का द्रव्य एक दूसरे को देखते हुए असंख्यात गुणा हीन और असंख्यात गुणा अधिक कैसे बन सकता है। नहीं, क्योंकि जिस जीव ने क्षपित कर्मांशिक विधि से आकर और देवों में उत्पन्न होकर अनंतानुबंधी की विसंयोजना की है, पुनः जिसने अंतर्मूर्त काल तक उसकी संयुक्तावस्था में रहते हुए डेढ़ गुणानी से गुणित एकेंद्रिय संबंधी समय प्रबद्ध, बीच में ल एक्स्ट्रा हो गया, समय प्रबद्ध में से संयुक्तावस्था का अर्थ क्या है? देखो, देव में उत्पन्न हुआ, सम्यक तो प्राप्त किया, फिर मिथ्या तो में चला गया
अंतर्मुक्ति,
तो उसको कहेंगे संयुक्तावस्था। अब उस संयुक्त अवस्था में रहते हुए डेढ़ गुणहानि से गुणित एकेंद्रिय समय संबंधी समय प्रबद्ध में से उत्कर्षण को प्राप्त हुए द्रव्य में, वहां जो एकेंद्रिय समय संबंधी द्रव्य पड़ा है उसमें से जो उत्कर्षण करके ऊपर चला गया, उसमें अधप्रवृत्त भागार का भाग देकर जो एक भाग लब्ध आवे, तत्प्रमाण शेष कषायों के द्रव्य को अनंतानुबंधी रूप से परिणमाया है। कितना द्रव्य एक अंतर्मूर्त में बन गया, जो विसंयोजना में अन्य रूप हुआ था अभी अनंतानुबंधी हो रूप से हो गया।
हाँ।
तो क्या कहा, देखो, कि एकेंद्रिय समय संबंधी जो समय प्रबद्ध है उसके उत्कर्षण को प्राप्त हुए द्रव्य में अधप्रवृत्त भागार का भाग देकर जो एक लब्ध आवे, उस प्रमाण अन्य कषायों के द्रव्य को अनंतानुबंधी से परिणमाए। पहले विसंयोजना में क्या किया था, अनंतानुबंधी का द्रव्य अन्य रूप परिणमाया था। अब क्या हो रहा है,
संयोजना की,
संयोजना के मिथ्यात्व रूप से परिणमेगा। तो मिथ्यात्व रूप से परिणमेगा तो वहाँ अनंतानुबंधी का बंध भी हो रहा है अभी।
हाँ, नया बंध हुआ है और यहाँ पे द्रव्य का
मिथ्यात्व अभी अनंतानुबंधी रूप से टर्न हो गया, उल्टा हो रहा है। यद्यपि यहाँ पर उस एक भाग का संख्यात्वा भाग नवक बंध का द्रव्य भी अनंतानुबंधी रूप से परिणत होता है, यहाँ संक्रमण तो हो ही रहा है, नया बंध भी हो रहा है
और बाकी के कषायों से,
पर उसकी प्रधानता नहीं है। मेजोरिटी किसके, संक्रमित होने वाले द्रव्य के। उसके बाद जो सम्यक्त को प्राप्त कर 266 सागर काल तक उक्त द्रव्य को गलाते हुए विसंयोजना के द्विचरम समय में स्थित है, उसके जघन्य भाव को प्राप्त हुआ अनंतानुबंधी लोभ का द्रव्य अधप्रवृत्त भागार के बिना जघन्य भाव को प्राप्त हुए मिथ्यात्व के जघन्य प्रदेश सत्कर्म से असंख्यात गुणा हीन होता है, यह बात न्याय है। और यहाँ पर गुणकार अधप प्रवृत्त भागार से असंख्यात गुणा है। न्याय यह बात न्याय न्याय है, यानी न्याय युक्त है, न्याय कहते उसको। यहाँ पर गुणकार अधप प्रवृत्त भागार से असंख्यात गुणा है। शंका, मूल द्रव्य का अधप प्रवृत्त भागार रूप गुणकार रहते हुए उससे छोड़कर गुणकार उससे असंख्यात गुणा कैसे है? नहीं, क्योंकि अनंतानुबंधी की विसंजना की अंतिम फाली से दर्शन मोक्ष अपना की अंतिम फाली असंख्यात गुणी हीन होने से गुणकार के उप प्रकार से होने में कोई विरोध नहीं आता, और अंतिम फालियों का उस प्रकार का होना सिद्ध है यह बात भी नहीं है, क्योंकि जघन्य स्थिति संक्रम के अल्पभूतत्व का कथन करने वाले सूत्र के बल से उसकी सिद्धि होती है। यानी जब स्थिति संक्रमण देखा था हमने, वहां की बात उसके आधार से यहाँ प्रदेश की जो स्थिति है, प्रदेश की जो विभक्ति, उसको सिद्ध कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? दर्शन मोह की क्षपणा होती तब जो अंतिम फाली खिलती है उसकी,
हाँ।
वो कितनी है? तो अनंतानुबंधी के विसंयोजन में जो अंतिम फाली है
उससे अनंत,
वो उसे असंख्यात गुणा हीन है। इसलिए मिथ्यात्व के द्रव्य से, जघन्य द्रव्य से अनंतानुबंधी का जघन्य द्रव्य जो है, यहाँ लिखा ना
कम,
उल्टा लिया ना कम है,
हाँ।
इसकी फाली बड़ी है ना, देखो मिथ्यात्व में जघन्य प्रदेश सत्क्रम असंख्यात गुणा है। अब यहाँ क्या कहते हैं? अनंतानुबंधी की जो अंतिम फाली उससे मोहनी की अंतिम फाली असंख्यात गुणा हीन है। उसकी जो फाली की वो छोटी है और उसकी फाली बड़ी थी, उसमें ज्यादा माल था तो बाद में उसका कम बचा है और इसका ज्यादा बचा है।
नहीं, यहाँ पे तो उल्टा है ना, अनंतानुबंधी विसंयोजन के अंतिम फाली से दर्शन मोह सपना के अंतिम फाली असंख्यात गुणा,
अंतिम फाली असंख्यात गुणा
हीन है, छोटी
है, तो बाद में जो निषेक बचे वो ज्यादा है।
अच्छा,
ऐसा लिया। यह विकृति गोपुच्छा का गुणकार कहा है? समुदाय रूप गुणकार तो तत्प्रायोग्य पल्ले के असंख्यात भाग प्रमाण है, क्योंकि पहले की गुणश्रेणी गोपुच्छा से यहाँ की गुणश्रेणी गोपुच्छा दर्शन मोह की क्षपणा करने वाले जीवों के परिणामों की प्रधानतावश उतनी गुणी उपलब्ध होती है, और विशुद्धि रूप परिणामों के अतिशय वश यह गुणकार यहाँ पर प्रधान है। शंका, गुण श्रेणी का महात्म्य किस प्रमाण से जाना जाता है? महात्म्य नहीं, वो कितनी बड़ी है गुण श्रेणी, ज्यादा कहाँ है? हमने भी सूत्र पढ़े थे कहाँ कहाँ असंख्यात गुणा होती है। समाधान, सम्यक्त्वोत्पत्ति, हाँ ऊपर पहले भी आई थी ना ये बात, सम्मत्त्वोत्पत्ति विय सावय विरये अनंतकम् मनसे दंशन मोह खवये कषाय उवसामये उवसन्ते खवये अखीण मोहे जिनेय नियमा भवे असंख्ये चा तव विवरीदो कालो संखेज गुणाय से। ये जो स्थान बताए हैं उसमें गुण श्रेणी तो असंख्यात गुणा होती है, और उसका जो काल है, गुण श्रेणी का आयाम है, उल्टे क्रम से संख्यात गुणा है। कितने निषेकों में गुण श्रेणी की रचना होती है, तो कहते अंतर्मूल प्रमाण होती है,
छोटा छोटा होता है।
तो मिथ्यात्व में जो गुण श्रेणी के लिए जितने निषेकों में गुण श्रेणी रूप से रचना हुई थी, कितने रूप से हुई थी, इतने निषेकों में हुई थी,
आयाम कम था,
तो इतनी लंबी गुण श्रेणी थी। अब मुनियों के या ऊपर के या क्षपणा में कितनी गुण श्रेणी होती है,
बहुत छोटी
होती है। तो बहुत छोटी होती है, परंतु उसमें माल ज्यादा आ जाएगा, कम में अधिक माल, अपकर्षण ज्यादा होता है और गुण श्रेणी कम परमाणुओं कर्म निषेकों में होती है। तो ये काल उसका उल्टे क्रम से संख्यात गुणा होगा, और ऊपर ऊपर जहाँ काल छोटा है वहां गुण श्रेणी रूप से निर्जरा असंख्यात गुणी होगी, क्योंकि इसमें छोटे हम देखते ना, छोटे हैं कम निषेकों में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वहां अनेक निषेकों में जितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उससे असंख्यात गुणा ये कम निषेकों में आया, तो प्रति निषेक माल अधिक निकल गया, तो ये असंख्यात गुणा निर्जरा होगी। वहां देखो इसका अर्थ देखेंगे हम समाधान में, सम्यक्तोत्पत्ति श्रावक। हाँ, तद्भाव सूत्र में सूत्र है, ये भी बात बहुत बार आई है। वीरत यानी मुनिराज, अनंतानुबंधी कषाय की विसंयोजना करने वाला, जिसको भी संयोजक कहते हैं। फिर पांचवें नंबर पर दर्शन मोह का क्षपक, फिर चारित्र मुनि का उपशामक, यानी उपशम श्रेणी वाला लेना, आठवें नौवे दसवें वाला। फिर उसके बाद उपशांत कषाय, ग्यारहवा गुणस्थान वाला। फिर क्षपक के तीन गुणस्थान लेना, और क्षीण मोह को अलग निकाला, और जिन, तो यहाँ तो दस स्थान कहे, अब जिन में भी स्वस्थान केवली और समुदात केवली, समुदात में उससे भी असंख्यात गुणा निर्जरा होती है। इन स्थानों में उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, प्रदेश असंख्यात गुणा कितने, परंतु उस निर्जरा में, निर्जरा हुआ है, निर्जरा में लगने वाला काल उससे विपरीत अर्थात अंत के स्थान से, दसवें स्थान से उल्टे क्रम से प्रथम स्थान तक प्रत्येक स्थान में संख्यात गुणा काल, यानी गुण श्रेणी लंबे निषेकों में, अधिक निषेकों में गुण श्रेणी रूप से रचना होती है, उसका आयाम लंबा है। इस प्रकार इन गाथा सूत्रों से गुण श्रेणी का महात्म्य ने उसका बड़प्पन ने उसकी कितनी है, यानी उसका आयाम कितना बड़ा है और उसकी निर्जरा कितनी अधिक है वो जाना जाता है। यही रुकेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूरु। अश्विन भाई,
नमोरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वर्जानम, नमो लोहे सप्तसावणम, नमोरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वर्जानम, नमो लोहे सप्तसावणम, नमोरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आर्यानम, नमो वर्जानम, नमो लोहे सप्तसावणम, नमो